पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर के कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज पीर 23 रबीउल सानी 1443 हिजरी नवंबर की 29 तारीख सन 2021 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ, नाम है मेरा अदील। प्रोग्राम सनराइज शो विद अदील में मेरा और आपका साथ सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की सुबह का आगाज भी अच्छा हुआ होगा। और ये अभी मैं स्टूडियो में आया हूँ तो ये आगाज मेरा अच्छा नहीं हुआ यार, मुझे पता चला कि इंटरनेट इज डेड अगेन और बीच में कोई बैकअप अरेंजमेंट जो किया गया था वो भी तारे काट के चली गई है के इलेक्ट्रिक वाले। सो वी आर बैक टू स्क्वायर वन आई गेस वेयर वी वर लास्ट वीक्स। इंटरेस्टिंग, अब सिचुएशन क्या होगी, सिचुएशन ये हुई है कि अभी फिलहाल मेरी आवाज जो है वो सिर्फ कराची में रेडियो के थ्रू जो है वो पहुंच रही है और इसके अलावा नहीं पहुंच रही। बाकी जगहों पे मुझे नहीं पता क्या हो रहा होगा, मीन कनेक्शन ही नहीं हो रहा होगा, इट विल नॉट बी कनेक्टिंग बिकॉज अभी हमारी आवाज जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुकैद है इस ट्रांसमीटर के थ्रू कराची के कोने कोने में जहां आवाज पहुंच रही होगी। सो वतन अजीज पाकिस्तान की जो मैं बात कर रहा था वो मैं गलत बात कर रहा था, गलत बात की मैंने, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी आवाज नहीं सुनी जा रही वतन अजीज पाकिस्तान में। अच्छा मैं ना ऑनेस्टली अभी तैयारी से भी नहीं आया कि मैं इंस्टा लाइव कर लूं, बिकॉज मैं तो आज ऐसी अभी तो लिटरली मैं अपने कैजुअल्स में उठकर आ गया हूँ, बिकॉज आई हैव टू गो बैक होम एंड आई हैव टू चेंज फॉर माय ऑफिस एंड स्टफ। सो व्हाट टू डू नाउ, इट विल बी अ बोरिंग डे मैन, सीरियसली। आदत इतनी हो गई ये शो जो है वो नेटवर्क में करने के हवाले से। व्हाट टू डू नाउ, व्हाट टू डू, ऑलराइट। अभी सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये कि आपने सुना नाजिया हसन की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना, a song which is very close to our heart and a voice which is very close to our hearts as well. ओके, अखबारात भी मेरे पास आ गए हैं, बहुत सारी बातें करनी थी यार इस वीकेंड पे, तो फिर टेंशन हो गई है कोरोना के हवाले से और ओमिक्रॉन नामी एक नया वेरिएंट साउथ अफ्रीका से आ गया है। साउथ अफ्रीका इसका ऐलान करके फंस गया है, आपको पता है, लेकिन आप जानते हैं कि उसका जो एक बड़ा इम्पैक्ट हुआ है वो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के हवाले से हुआ है और आलमी मंडी में जो तेल की कीमत है उसमें जबरदस्त कमी जो है वो देखने में आई है। तो पाकिस्तान जैसे जो ममालिक हैं उनके लिए तो ये अच्छी खबर आई है, लेकिन ये इसके हवाले से हम बात करेंगे कि क्या ये सस्टेनेबल है या नहीं, क्योंकि एक रीबाउंड आया है ऑयल प्राइसेस में कल फ्राइडे को, उसमें जबरदस्त तेजी के बाद आज जब मंडियां खुली हैं एशिया में तो उसमें एक बार रीबाउंड आया और ये एक्सपेक्टेड था रीबाउंड, बिकॉज जाहिर है फ्राइडे को जब ये मंदी हुई थी तो उस दिन प्रॉब्लम ये थी कि अमेरिका में थैंक्स गिविंग की छुट्टी थी तो उसकी वजह से वहां पे सब कुछ कारोबार बंद था, देयर वाज नो लिक्विडिटी, अमेरिकंस वर चिलिंग, दे वर ईटिंग टर्की एंड स्टफ। सो अब ये कि जरा सिचुएशन वापस हुई है तो देखते हैं जी क्या रहती है सूरत हाल, ये ऑयल की कीमतें किस तरह वापस आती हैं। सो वी विल डेफिनेटली डिस्कस अबाउट दैट गोइंग फॉरवर्ड। पाकिस्तान बांग्लादेश टेस्ट मैच इस वक्त सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो गया है, इंडिया न्यूजीलैंड टेस्ट मैच जो है वो अपने अख्तितामी मरहले में दाखिल हो गया है और जैसा कि एक्सपेक्टेड था इंडिया की फतह जो है वो अब इसमें काफी हद तक सर्टन नजर आ रही है। और इसके अलावा ये अखबारात की शह सुर्खियां तो मैंने देखी नहीं थी, एक और वीडियो स्कैंडल सामने, मुझे नहीं पता था कि ये वीडियो स्कैंडल जो है ये इतना बड़ा हो गया। मैंने 133 में वोट खरीदने की वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है और नून लीग की जो है वो ये वीडियो सामने आई है, वेरी इंटरेस्टिंग, मजेदार बात है यार, बिकॉज नून लीग तो यहाँ पे तो आपको पता है कि पीटीआई वैसे ही इस मुकाबले में मैदान छोड़ के भाग गई थी, तो नून लीग को मसला क्या था ये वोट खरीदने वाला जो ये कर रहे थे। बहरहाल ये कोई लाहौरी तो कोई सुन ही नहीं रहा होगा प्रोग्राम इस वक्त, तो मुझे क्या बताएगा, लेकिन खैर चलें जी अभी ऐसा करते हैं, अभी हमें बढ़ना है यार। गाइस वी हैव टू मूव टुवर्ड्स अ ब्रेक राइट नाउ, तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ ब्रेक और ब्रेक के बाद जो है ना वो जरा एक कम गाना सुनते हैं और इन द मीनवाइल मैं जरा थोड़ी सी अरेंजमेंट करता हूं कि अगर हम कुछ इंस्टा लाइव वाला सीन जो है ना वो अभी स्टार्ट कर सकें, बिकॉज आई रियली डोंट वांट माय फ्रेंड्स अप कंट्री टू मिस आउट ऑन द शो। सो व्हाट टू डू नाउ, अभी हम फिर ऐसा करते हैं ब्रेक लेते हैं, ठीक है, ब्रेक के बाद एक अच्छा सा गाना सुनेंगे, सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। Alright, so you were listening to Raat Fateh Ali Khan. This was Dil Tadpe. और अभी सीन ये हुआ कि मैं वैसे बैक टू बैक गाने आपको पता है अपने प्रोग्राम में चलाता नहीं हूँ, लेकिन बैक टू बैक गाने चलाने की जो रीजन थी, जो वजह थी उसकी, ऑफ कोर्स यही थी कि मैं सेटअप कर रहा था यार, मेरे लिए भी दिस केम एज अ सरप्राइज के द इंटरनेट इज नॉट वर्किंग, बिकॉज आई थॉट दैट वी हैड मैनेज्ड टू क्रैक द प्रॉब्लम, हम इस मामले को रिजोल्व करने में कामयाब हो गए थे, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर आया, मैं जैसे ही ट्विटर पे लॉग इन करने की कोशिश की तो फिर हमारे इंजीनियर बाबू ने मुझे बताया कि भाई एक बार फिर से हो गया है मसला एंड द इंटरनेट इज नॉट वर्किंग, सो इट्स ओनली कराची दैट इज लिसनिंग, सो दैट्स द थिंग मैन, बट हियर वी आर बैक, वी आर हियर ऑन इंस्टाग्राम लाइव, बट द प्रॉब्लम इज मैं क्योंकि आज पूरी तैयारी से फिर वो ही नहीं आया, तो मैं अपनी वो डोंगल भी साथ लेके नहीं आया, एंड आई हैवंट ब्रॉट माय लैपटॉप अपस्टेयर्स एज वेल. सो आप लोगों के मैसेजेस वगैरह ये सब अब कैसे प्रोग्राम में शामिल होंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप देखें मैं तो तैयारी से भी नहीं आया, मैं तो आज एक ऐसी घरेलू सी जो है ना टी शर्ट पहन के आ गया हूँ, और क्योंकि मुझे घर जाके तैयार होना है आज. आज मैंने अपना थोड़ा सा रूटीन चेंज किया हुआ है, बट चलें जी. ग्रेट पीपल आर ज्वाइनिंग इन ऑन इंस्टा एंड ऑल एंड स्टफ. सो या 7:40 हो चुके हैं और सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. लाहौर की हलका 133 की मैं बात कर रहा था, जहां की अब वीडियो स्कैंडल जो है वो एक नया सामने आया है. तो मोहम्मद अली शाह साहब हमें कराची में सुन रहे हैं, उन्होंने कहा क्या हो गया अगर लाहौर में आवाज नहीं जा रही तो एक लाहौरी कराची में जरूर प्रोग्राम सुन रहा है. प्रोग्राम बिल्कुल जी, शाह साहब को हम बहुत वेलकम कहते हैं. और अच्छा जी क्या कह रहे हैं जी, जुल्फी कहते हैं सीइंग समवन इन टी शर्ट इन नवंबर. यार वैसे इट वॉज 20 degrees Celsius इन कराची दिस मॉर्निंग, यानी इस बार अभी वालदा से भी बात हो रही थी रास्ते में, कनाडा में वो आजकल होती हैं, और आज वहाँ पे बहुत शदीद सर्दी जो है वो पड़ रही है. और उसमें मैं उनको यही बता रहा था, मैंने कहा आज तो 20 degrees Celsius था कराची में, लेकिन आज जो फर्क है वो ये है, द डिफरेंस इज दैट आज थोड़ी सी हवा चल रही थी और थोड़ी सी लैंड ब्रीज चल रही है कराची में, तो उम्मीद ये कि शायद इस हफ्ते में शायद सर्दी की शिद्दत में कुछ इजाफा हो जाए, बिकॉज अब तक तो हमारे साथ कुछ खिलवाड़ ही हो रहा है यार. बट एनीवे, कराची नॉट येट कूल योर टी शर्ट, बिलाल कहते हैं. अच्छा जी अदील भाई, लाहौरी बहरिया कराची में हाजी उस्मान साहब, चलें जी, दैट इज ग्रेट. Yeah, of course, lots of friends from Lahore living in Karachi. वैसे आजकल तो उल्टी गंगा बह रही है इस चीज़ के हवाले से, हमारे कराची के बहुत सारे दोस्त जो हैं वो अब लाहौर में रहना शुरू हो गए हैं और इस्लामाबाद में, but great. And Dr. Farah says, welcome to the show. Thank you so much. बहुत शुक्रिया. आतिका कहती हैं अस्सलाम वालेकुम. आतिका वालेकुम अस्सलाम एंड ऑल. चलें जी, तो ज़ाहिर है इस पूरे वीकेंड पे जो दुनिया भर में बात रही है, दैट इज बिंग अबाउट दिस न्यू कोविड वेरिएंट और कोविड का एक नया. देखिए भाई, ये तो बात समझने वाली है कि ये मामला अभी हमारा फिलहाल साथ छोड़ने वाला है नहीं, और ये वेरिएंट्स आते रहेंगे जब तक दुनिया में वी विल नॉट इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन. जब तक दुनिया में वैक्सीन को जो है वो ठीक से हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तब तक जो है वो ये मामला चेंज नहीं होंगे. और अभी ऐसा ही हुआ है, साउथ अफ्रीकन्स फंस गए हैं बेचारे. उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जी हमारे यहाँ नया वेरिएंट ये आया है, और वो अनाउंस करते ही फंस गए, और दुनिया ये समझ रही है कि अगर हम साउथ अफ्रीका के लिए फ्लाइटें वगैरह बंद कर देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये वायरस फैलने से ऐसा कुछ नहीं है, वायरस ऑलरेडी फैल चुका है दुनिया में. इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर ऑल द कंट्रीज दे स्टार्ट अनाउंसिंग कि हमारे पास भी जो है वो ये वायरस का वेरियंट पहुँचना शुरू हो गया है. इट्स टू लेट. आई मीन ये अब चीज रुक भी नहीं सकती है. सो फैल गया वायरस, यू कांट स्टॉप इट नाउ. तो साउथ अफ्रीकन्स को या सदर्न अफ्रीकन खित्ते को यहाँ पे सिंगल आउट करने का जो है ना वो कोई फायदा जो है ना वो फिलहाल आपको होने नहीं वाला है. लेकिन अब क्या कर सकते हैं. बस साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट को मैं सुन रहा था, सिरिल रामाफोसा, वो काफी गुस्से में थे कल, और वो यही कह रहे थे कि यार दिस इज एफ्रोफोबिया, यानी अफ्रीका का खौफ है. फोबिया खौफ के लिए कहा जाता है, लेकिन बट या दैट्स अ फैक्ट कि ये अफ्रीका, अगर कि किसी और तरक्की याफ्ता मुल्क में ये वेरिएंट आ रहा होता तो फिर क्या उनके साथ भी आप ऐसे ही कर रहे होते, दैट इज अ बिग क्वेश्चन देयर नाउ. सो बहरहाल ऑयल की प्राइसेस हमने देखा कि फ्राइडे को इसकी वजह से करके, बिकॉज लग लोगों को यही रहा है कि यार ये जो वेरियंट आया है ना ये काफी डेंजरस वेरियंट लग रहा है, ये लग रहा है. देखिए डेल्टा भी बहुत डेंजरस वेरियंट था, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, अभी 2 हफ्ते का टाइम मांगा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, और 2 हफ्ते में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमें ये बताएगी कि ये जो वैक्सीन है जो हमारी और आपकी रगों में दौड़ रही है, क्या ये वैक्सीन इस पे कारगर साबित हो रही है या नहीं. बट दैट रिमेन्स टू बी सीन वेदर दिस हैपन्स और नॉट. ऑलराइट, सो या दैट्स द थिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिटरमिन करने वाली है. अल्लाह करे ये वैक्सीन काम कर रही हो यार. लेकिन अगर वैसे फाइजर ऑलरेडी ये बोल चुका है कि अगर उन्हें वैक्सीन में अपनी कुछ रद्दोबदल करनी पड़ी इस वेरिएंट के लिए, तो दे आर गोइंग टू नीड अराउंड 35 days फॉर दैट, यानी तकरीबन 5 हफ्ते की वो बात कर रहे हैं जिसमें वो वैक्सीन में अपनी वेरियंट्स जो है वो लेकर आ जाएंगे. लेकिन यार फिर क्या दोबारा से वैक्सीन लगवाएंगे, फिर ये करेंगे, ये तो अजीब जो है ना फौरियत लग रही है यार. लेकिन खैर एनीवे, बिलाल अली कहते हैं भाई जी मेरा नाम लेना, आपका नाम ले लिया मैंने भाई जी. और इसके अलावा और कौन कौन है, फरहान रजा साहब कहते हैं नाइस टी. ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर. जुल्फिकार कहते हैं, जुल्फिकार मे बी ही वांटेड टू यूज द वर्ड रेसिज्म. वेल दैट्स पॉसिबल, आई थिंक दैट इज द फॉर्म ऑफ रेसिज्म. यस. अच्छा जी, काशिफ बेग वाज लिसनिंग टू मी इन दुबई. ही सेज यूएई बैंड नामीबिया टुडे. आई वाज थिंकिंग देयर टीम वाज हियर, देयर टीम वाज हियर, बट क्योंकि वो लोग यूएई में हैं तो फिर दे कैन बी अलाउड टू गो बैक ऑफ कोर्स. फहीम खान साहब अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया सर. एंड देन डॉक्टर शैला, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग टू यू. एंड देन वी हैव गॉट मुद्दसर. यस, मुद्दी इज लिसनिंग. मुद्दी, हम लोग का मुद्दसर का मैं तारुफ कराता रहता हूँ, मेरे यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं. सैटरडे को वी हैड आवर फ्रेंड्स रीयूनियन एंड मुद्दी तुम्हें बहुत याद किया, सीरियसली स्पीकिंग. ऑलराइट, बहुत दिनों बाद बारबेक्यू टुनाइट गया यार, गुड टू सी सम ट्रैफिक देयर. आज PSX की रिपोर्ट क्या है भाई? अब PSX की रिपोर्ट अच्छी नहीं लग रही है मुझे आज, वैसे ही हालात, मुफलिसी में आटा गीला होने वाला है. अच्छा जी, फरहान कहते हैं बूस्टर इज ऑलमोस्ट ड्यू एट द ईयर एंड, वैक्सीन तो हर साल लगवानी है भाई, वैक्सीन लगवानी है. मुझे ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन से पहले अगले साल तक जो है ना, ओरल मेडिसिन बहुत आम होने वाली है. ओरल मेडिसिन की वैसे आपको पता है दो कंपनियां इस पे काफी हद तक काम कर चुकी है, मर्क की दवाई है और फाइजर अनाउंस कर चुकी है कि वो टेबलेट की तरह दवाइयां होंगी, जो कि आप एक आम जिस तरह फ्लू के लिए कोई दवाई लेते हैं उस तरह आप इसके लिए भी दवाई लेंगे. एंड आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर फॉर श्योर. एंड वी हैव गॉट मंसूर, कहते हैं मॉर्निंग एवरीवन, नाइस टू सी यू डूइंग योर शो ऑन इंस्टा लाइव. मजबूरी है यार, खुशी से नहीं कर रहा मैं, सीरियसली आपको बता रहा हूँ मैं. हसनैन पिंडी में सुन रहा है प्रोग्राम, थैंक यू. एंड मुद्दी, यस वी ऑल्सो डेट फूडी फॉर लाइफ, कहते हैं गुड मॉर्निंग अदील भाई, थैंक यू. एंड फरहान कहते हैं बैक टू बैक निहारी इन एंड बारबेक्यू टुनाइट, बोट बेसन है यार. सीरियसली स्पीकिंग मैं यही सोच रहा था कितना बचो इन खाने से, लेकिन बैक टू बैक सीन हो गया. नाजिया थैंक यू सो मच. यस अलहमदुल्ला डूइंग वेल एंड आई होप यू एंड जावेद एंड फैमिली आर डूइंग वेल. काफी पुराने लिसनर्स हैं हमारे ये, अब तो माशाल्लाह बच्चे बड़े बड़े हो गए होंगे. एंड जीशान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फवाद आलम कुंड स्कोर. यार आपने भी डॉक्टर साहब, आपने भी सिंगल आउट कर दिया फवाद आलम को यार, इतने बड़े बड़े प्लेयर पाकिस्तान टीम का स्कोर नहीं कर पाया पहली इनिंग्स में. लेकिन मेरे भाई अभी पिक्चर बाकी है, अभी मैच में काफी कुछ गेम बची है. सो या लेट्स सी व्हाट हैपेंस. अभी मुझे ब्रेक की जाने पड़ना है, सो मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ. जो लोग मेरे दोस्त कराची में मुझे डायल पे सुन रहे हैं, जो रेडियो पे सुन रहे हैं, वो अभी ब्रेक को एंजॉय करें. और बाकी इंस्टाग्राम पे डिस्कशन जो है वो जारी रहता है. इफ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टा एज वेल, देयर इज नॉट नथिंग मच टू फॉलो देयर. बट हाँ, इंस्टा लाइव अगर आप मुझे देखना चाहते हैं इस वक्त, तो आप जो है वो एट अदील अजहर, दैट्स वन वर्ड AdeelAzharAR, आप वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं. वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ ब्रेक, विल कैच यू राइट आफ्टर दिस, डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, दैट वाज जल विद रंगों में एंड होप यू गाइस एंजॉय दैट सॉन्ग. आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर अभी हम डालते हैं नजर. ऑलराइट सो चलें जी, सीन क्या हो गया भाई, एक नई ये वीडियो आ गई है और हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कोई नई वीडियो आ रही है जिसकी भविष्यवाणी जो है वो डॉक्टर कहाँ से आ गए, कैप्टन सफदर आवान जो है वो बताने वाले थे कोई वीडियो आने वाली है और आप देखिएगा अभी क्या होगा उस वीडियो में एंड स्टफ. लेकिन ये कि वीडियो जो आई है फिलहाल, वो तो वीडियो आ गई है इस वक्त नून लीग के कुछ कारकुनान की, हल्का 133, ये लाहौर में जिमनी इंतखाब आपको पता है होने वाला है. और इसमें मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है यार, तो नून लीग के लिए तो वो खाली मैदान छोड़ के PTI वहां से कट ली है, तो इनको प्रॉब्लम क्या है मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये इनको क्यों कुरान पे, वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी ना, कुरान पे हलफ लेकर वो पता नहीं 2000 रुपए शायद दे रहे हैं कि जी मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर और कुरान पे हाथ रख कर हलफ लेती हूँ कि मैं, ये वो खातून कोई हलफ ले रही थी कि मैं नून लीग कोई शेर के निशान को जो है ना वो वोट दूंगी. बट खैर चलें जी, ओके अभी सीन क्या हुआ, अखबार ने इसको लीड बनाया अभी, दो अखबार ने, ओके. और डॉन का लिखना है ECP orders forensic audit of video clip showing vote buying. Election official asked PMLN candidate to explain her position. Rival parties level allegations against each other. Okay. And जंकी भी आज जो लीड है वो ये है, एक और वीडियो स्कैंडल, लाहौर के NA 133 में नून लीग और PP का एक दूसरे पर वोट खरीदने का इल्जाम, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया. वैसे यार PP किस चक्कर में एक्टिव हो रही है यार, मैं तो ये समझ नहीं आ रहा. PPP को वहाँ कैंडिडेट मिल गया, यही बड़ी बात है यार. लेकिन खैर चले जी, एक्सप्रेस ने आज थोड़ा मुख्तलिफ लीड बनाई है. वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान है, कहते हैं वसाइल पर माफियाज की इजारा दारी खत्म करेंगे. ओके, साथी मफाद नहीं अपने अकीदे की वजह से सियासत में आया. अमीर वो होता है जिसका जमीर खरीदा ना जा सके. ओके, इमरान खान साहब ने जो है वो एक इंटरव्यू दे रहे थे वो एक अमेरिकन होस्ट को, और वहाँ पे उन्होंने जो है ना वो ये बातें की. और ज़ाहिर है इमरान खान साहब की जो इंटरव्यूज़ का एक खासा होता है वो उनकी अपनी जो खुद पसंदी और अपनी जो वो एग्जाम्पल हैं और अपनी जो वो सारी बातें कर रहे होते हैं, कमाल है यार. एनीवे आगे बढ़ते हैं जी. अमरीका का तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने से फिर इनकार. दोहा में जारी मुज़ाकरात के दौरान मुंजमद असासों की बहाली भी एजेंडे में शामिल. अफगानिस्तान इंसानी तबाही के दहाने पर निस्फ आबादी को फौरी तौर पर इमदाद की ज़रूरत है, ये कहना है यूनिसेफ का. तहम बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अमेरिका तालिबान के हवाले से अफगानिस्तान की इस नई हुकूमत को एक्सेप्ट करने के हवाले से, कबूल करने के हवाले से फ़िलहाल किसी मूड में जो है वो नजर नहीं आ रहा. ऑलराइट, बाकी क्या खबरें. विफाक ने सिंध का नया बलदियाती निज़ाम मुस्तरद कर दिया. सुप्रीम कोर्ट से जल्द समात का मुतालबा. कराची को हक दिलाकर रहेंगे, जुल्म नहीं होने देंगे. दो हफ्ते बाद इमरान खान ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह कर देंगे. वैसे याद रहे कि इन्होंने नवंबर के एंड में जो है ना वो ये बात की थी कि ये ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा. बिकॉज नवंबर इज ओवर नाउ, टुमारो इज द लास्ट डे एंड इट इज नॉट ओपनिंग टुमारो. अब इन्होंने दिसंबर के मिड की टाइम लाइन दे दी है. लेकिन खैर बहरहाल, लेकिन इस दौरान जो एक इंपॉर्टेंट खबर आई है वो ये कि सिंध गवर्नमेंट ने बल्दियाती जो लंगड़ा लूला एक बल्दियाती निज़ाम है सिंध का, उसमें फर्दर तरामीम कर दी हैं खामोशी के साथ. और ये बिल भी जो है ये सिंध असेंबली से ज़ाहिर पास करवा लिया जाएगा. लेकिन ये बात याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो काफ़ी अरसे से एक पटिशन फाइल हुई हुई है आइन का जो आर्टिकल 141 उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से. लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो तेज़ी और जो फुर्तियाँ नस्ला टावर के मामले में दिखा रही है वो कराची का या सिंध का या पाकिस्तान का जो बेसिक प्रॉब्लम है लोकल गवर्नमेंट्स का ना होना, उसके हवाले से कोई जल्दी के जो है वो मूड में फिलहाल नजर नहीं आ रही. IMF शराइत टैक्स मराहत खत्म करने के लिए मिनी बजट लाने का फैसला. टैक्स कवानीन 14 स्टेट बैंक तरमीमी बिल काबीना में पेश होंगे. GST का स्टैंडर्ड रेट 17% नाफिजुल अमल हो जाएगा. बरतानिया फरार मतलूब मुलजमान के वीजे मंसूख कराने के लिए हुकूमती मशावरत शुरू. बानिय मुत्तहदा इसहाक डार हसन और हुसैन नवाज समेत दर्जनों मुलजमान बरतानिया में मुकीम. हवालगी मुहैदा ना होने से मुश्किलात. देखिए अल्ताफ हुसैन और ये बानिय MQM और हसन हुसैन नवाज ये सब ब्रिटिश सिटीजन है, इनको आप दीवाने का ख्वाब है इनको वापस लेकर आना. लेकिन अभी जो मलिक रियाज और उनके साहबजादे वाला हमने एक इंसिडेंट देखा है ओवर द वीकेंड, ये खबर आई थी, क्या ये चीज नवाज शरीफ साहब पे अप्लाई होती है? क्या बरतानवी हुकूमत वाकई उनको क्रिमिनल समझती है? क्या वो पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम पे इतना एतमाद करते हैं या नहीं? दैट रिमेन्स टू बी सीन. क्योंकि ज़ाहिर है मियाँ साहब तो एक प्ली ले सकते हैं कि पाकिस्तान में उनके और उनके खानदान के खिलाफ जो है वो बहुत ही जबरदस्त किस्म का बदला लिया जा रहा है उनसे, और उनको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो है वो निशाना बनाया जा रहा है. सो ही कैन ऑलवेज टेक दैट प्ली अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट. सो मैं ये देख रहा था कि कल जो है वो ये रियाज साहब और उनके साहबजादे की जो न्यूज़ आई है बरतानिया से, उससे हमारे कुछ लोग बड़े एक्साइटेड हो रहे थे कि जी यही फॉर्मूला जो है वो मियाँ साहब पर भी अप्लाई होने वाला होगा. तो मुझे ऐसा बहरहाल होता है नहीं है, लोता हुआ नजर आ नहीं रहा है. राइट्स इरप्ट इन चारसद्दा एमिड एलिगेशन ऑफ कुरान डेसिक्रेशन. सुनने में आ रहा है जिसमें भी TLP वाले काफी उस इलाके में धमा चौकड़ी मचाई है, और सुनने में आया कि पुलिस स्टेशन जो है उसको भी जला दिया गया है. लेट्स सी और क्या सिलसिला है. ठीक है, रुकते हैं यहाँ पे हम, बिकॉज टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक का हुआ है. वक्त मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. और अभी हम बात करने वाले हैं खेलों के हवाले से. तो बात करते हैं पहले पाकिस्तान वर्सेस दो. आपको पता है इस वक्त टेस्ट मैचेस पाकिस्तान बांग्लादेश भी चल रहा है, इंडिया न्यूजीलैंड भी चल रहा है, और दोनों काफी दिलचस्प और मजेदार टेस्ट मैचेस हो रहे हैं यार. वैसे वाकई सीरियसली लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट की ज्यादती का एक फायदा यह हुआ है कि जो टेस्ट मैच क्रिकेट है ना वो बहुत एक्साइटिंग हो गई है, और इसमें जो है ना वो कोई शक है नहीं. बट अभी क्या सीन हुआ है? सीन ये हुआ है कि जी चिटागोंग टेस्ट और पाकिस्तानी बैटिंग ने कल डिसअपॉइंट किया यार, काफ़ी डिसअपॉइंट किया पाकिस्तानी बैटिंग ने. और उसमें हुआ ये कि यू एक्सपेक्टिंग बेटर, आई मीन सीरियसली 150 रन पे कोई विकेट ना गिरी हो आपकी और पूरी टीम आपकी जो है वो तकरीबन 300 रन से कम पे आउट हो जाती है. सो दैट्स वेरी वेरी पुअर बैटिंग, स्पेशली जिन खिलाड़ियों से हमें उम्मीदें थी कि जो रन करेंगे. पाकिस्तान टीम के बड़े मियां बुजुर्गवार जनाब अजहर अली साहब, पाकिस्तान की टीम के खुशकिस्मत तरीन खिलाड़ी, मेरे ख्याल से पाकिस्तानी क्रिकेट की तारीख का खुशकिस्मत तरीन खिलाड़ी अजहर अली. नई रन हुए, उन्होंने सिफर पे आउट हुए कल. 17th time इन इस करियर दैट अजहर अली जो है वो सिफर पे आउट हुए. वो आपने ग्राफिक तो देख लिया होगा, दुनिया में सब ज्यादा दफा जीरो पे आउट होने का रिकॉर्ड के काफी करीब जो है ना वो पहुंच चुके हैं अभी. सो लेट्स सी. इसके अलावा फवाद आलम से उम्मीदें थी यार, लेकिन यार कल एक जो चीज हुई ना वो ये हुई कि यार कल अंपायर्स ना बड़े दयालु मूड में थे. और आपको पता है कि ये जो अंपायर्स इस वक्त इस मैच में अंपायरिंग कर रहे हैं ये आईसीसी एलीट पैनल के अंपायर नहीं है, ये बांग्लादेश के अपने लोकल अंपायर्स हैं और उन्होंने उनको जो है ना वहां पे खड़ा कर दिया है. और अब जो है ना वो सीन ये हुआ है कि ये पाकिस्तानों को चांस ही नहीं दे रहा यार. यानी ऐसा लग रहा था उनका उनका मुआहदा हुआ हुआ था कि भाई यार तू अपील कर मैं आउट दूंगा. अच्छा वो हो ये रहा था कि 50-50 डिसीजन, स्पेशली आबिद अली वाला जो आउट था ना यार, यार ये पता ना दिस इज वेयर दिस इज द एकिलीज हील्स ऑफ ऑफ डीआरएस. यानी यार आबिद अली का ऑब्वियस लगा था. आई मीन आप रीप्ले देखते हैं आप कहते हैं बच गया यार, दिस हैज टू बी मिसिंग. आई मीन दीज आर दोज डिसीजन जिसको अंपायर को फ्रॉम द नेकेड आई बैट्समैन के फेवर में देना चाहिए. बिकॉज वो जैसे रीप्ले में गया वो बिल्कुल बॉल का आउटसाइड जो है वो उसकी स्टंप को क्लिप करता हुआ जा रहा है वो, तो अंपायर कॉल पे आ गया यार. यार यहाँ पे तो फॉर्मूला लगाना चाहिए यार, इफ 50% ऑफ द बॉल इज नॉट हिटिंग इट शुड बी मिसिंग. ऑलराइट, आई मीन वो आबिद अली के साथ कल बैड सीन हो गया. बिकॉज आबिद तमाम तर जहां दूसरी तरफ विकेट गिर रही थी, आबिद वाज स्टिल लुकिंग अग्रेसिव एंड ही वाज लुकिंग फॉर रन्स और 200 उसके भाई की जो है ना वो लग रही थी कि यार ये मूड में है. तो कल और फिर जो एक और कौन सा एक नुमान का मेरे ख्याल से जिन्होंने बैट पैट दिया है, वो जो एलबी दिया था कौन सा दिया था, आई मीन कुछ गलत डिसीजन हुए यार कल अंपायर का. आई मीन ये थोड़ी ज्यादती हो गई यार कल पाकिस्तान के साथ. लेकिन बहरहाल जी पाकिस्तान टीम ने जो है ना वो 141 रन का कल इजाफा किया, उनकी सारी विकेटें जो है वो उसमें गिर गई. 44 रन का खसारा हुआ है. ये तो शुक्र करें आखिर में हमारे इसने फहीम अशरफ वगैरह ने और इन्होंने आके कुछ शाहीन वगैरह कुछ लोगों ने आके मिलकर रन कर लिए तो थोड़ा सा जो है सिचुएशन ठीक हो गया, वरना भाई जैसे कहते हैं कि गेम काफी खराब हो गई थी. कल जब खेल खत्म हुआ तो 39 रन पे बांग्लादेश के 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे. शाहीन आफरीदी ने बेहतरीन बॉलिंग किया, 3 विकेट शाहीन जो है वो लेने में कामयाब हुए. एक विकेट जो हसन को मिली, हसन को इस मैच में ऑफकोर्स वो अब तक 6 विकेट जो है वो ले चुके हैं. इससे पहले पाकिस्तान जब बैट अच्छा अभी अभी अगर हम मैच की बात करें आई वुड से दैट बिकॉज इनकी जो लीड है इस वक्त वो तकरीबन कोई अब 83 रन की लीड हो चुकी है. सो पाकिस्तान को सिचुएशन थोड़ी मुश्किल लग रही है. आई वुड से 60-42 बांग्लादेश राइट नाउ. लेकिन इस टेस्ट मैच में अब तक जो चीज हमने देखी है वो ये कि पहला सेशन जो है वो बैटिंग टीम के लिए तबाही साबित हो रहा है. चाहे वो पहला दूसरा तीसरा दिन, और उम्मीद यही करते हैं कि आज के दिन भी ऐसा ही रहे सिलसिला. पाकिस्तान को 150 रन से पहले इनको आउट करना है. मैं 150 रन की लीड की बात कर रहा हूँ, यानी हमें अगले 70-75 रन में वेस्ट इंडीज कह रहा हूँ बांग्लादेश की टीम को जो है ना हमें आउट करना पड़ेगा. अदरवाइज ये मैच हमारे हाथ से भैया निकल गया, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा. बिकॉज विकेट अब जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा टर्न ले रही है और विकेट जो है ना वो काफ़ी इस वक्त प्रॉब्लम जो है ना वो क्रिएट कर रही है. सही, नुमान का आउट था. सो ये नुमान का था, थैंक यू सो मच. दूसरा फिर हम बात करते हैं कि इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड. कानपुर टेस्ट अपने आखिरी मराइल में दाखिल हो गया है और इंग्लैंड को सॉरी न्यूजीलैंड को जीतने के लिए बहुत सारे रन चाहिए, बहुत सारे रन. मेरे ख्याल से अब वो तो रन को देख भी नहीं रहे. नाउ न्यूजीलैंड हैज़ टू बैट आउट द एंटायर डे. जिन जीतने के लिए उनको तकरीबन कोई 125 रन अभी चाहिए. उनकी 9 विकेटें बची हैं. कल जब खेल खत्म हुआ तो ऑलरेडी 4 रन पे जो है वो एक खिलाड़ी आउट हो चुका था कानपुर टेस्ट में. और एक मौके पे जो है ना वो इंडिया मुश्किल में आ गया था. उनकी 6 विकेटें जल्दी गिर गई थी, लेकिन उसके बाद जो है वो श्रेयस अय्यर और वर्धमान साहा ने जो है बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया. 7 विकेट पर 234 रन पर जो है वो इंडिया ने अपनी बैटिंग को डिक्लेयर करने का ऐलान किया. और यंग की विकेट जो है वो खो चुके हैं. अभी यंग ने पहली इनिंग्स में अच्छी बैटिंग की थी. ताम उनके जो प्लेयर मेन प्लेयर थे वो लेथम थे, टॉम लेथम, जो अभी भी विकेट पर मौजूद हैं. लेकिन ये एक चीज़ जो माननी पड़ेगी वो ये माननी पड़ेगी कि यार इंडिया जिस लेवल की घटिया विकेटें बनाता है अपने होम ग्राउंड पे, आज ये जो टेस्ट मैच हो रहा है ये उसके मुकाबले में थोड़ा बेहतर विकेटों पे जो है ना ये मैच हो रहा है. और इसलिए ये मुकाबला जो है ना ये जरा सही जा रहा है ये. अब ये कि न्यूजीलैंड का जीतना तो इस वक्त काफी मुश्किल लग रहा है. न्यूजीलैंड को पूरा दिन खेलना पड़ेगा ड्रॉ करने के, लेकिन ऐसा होना नहीं वाला. आई थिंक दूसरे सेशन की मार है न्यूजीलैंड की टीम और ये जो है ना सिचुएशन मुश्किल हो गई है. ठीक है जी, तो मजेदार टेस्ट मैचेस हैं. दोनों मैचेस का फैसला बाय द वे आज हो सकता है, सो यू नेवर नो. ऑलराइट, जाते जाते जरा कुछ बात करते चले हैं हॉकी वर्ल्ड कप के हवाले से. जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप जो है वो भुवनेश्वर, वैसे भुवनेश्वर उड़ीसा में जो इंडियन रियासत है वहां पे ये एक तरह का उनका हॉकी कैपिटल बन गया यार. आपको पता है उनके जो चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक नाम है मेरे ख्याल से उनका, वो बड़े हॉकी के शदाई हैं और उन्होंने ओडिशा ने जो है स्टेट ने फुल इंडियन हॉकी को जो है ना वो अडॉप्ट कर लिया है और उसमें जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है. सो अर्जेंटीना ने एक सख्त मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 3-4 जो है वो शिकस्त दी और क्वार्टर फाइनल की दौड़ से पाकिस्तान को जो है वो बाहर कर दिया है और पाकिस्तान इवेंट रैंकिंग के लिए आज अमेरिका से मुकाबला करेगा. देखिए बात बड़ी सिंपल है, हॉकी में हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी, उम्मीद क्या थी, क्या उम्मीद लगा के बैठे हुए थे हॉकी में, क्या कर लोगे यार, वो कुछ नहीं. जैसी उम्मीदें थी वैसी हमारी टीम खेल रही है, अब इस पे क्या कह सकते हैं हम यार. सो ठीक हो गया, तो ये तो हॉकी का चैप्टर भी हमारा जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप का क्लोज हुआ. अब फुटबॉल की बात कर लेते हैं. वीकेंड पे इंग्लिश प्रीमियर लीग के मुकाबले हुए, आर्सेनल ने कामयाबी हासिल की, गुड विन फॉर देम. और उसके बाद जो है वो आर्सेनल इज इन टॉप 5 बाय द वे. लग नहीं रहा था यार जिस तरह सीजन का स्टार्ट हुआ था आर्सेनल का और पहले 3 मैचेस अपने लगातार हार गए थे, लग रहा था कि इस साल तो रेलीगेट हुआ आर्सेनल. लेकिन आर्सेनल ने अच्छा कमबैक किया है सीजन में, दे बीन विनिंग मोस्ट ऑफ देयर मैचेस. अब अपने से ऊपर टीमों को हराने में उनको जरा दिक्कत हो रही है, लेकिन आई थिंक कल का जो और मैनचेस्टर सिटी ने कामयाबी हासिल की, उन्होंने वेस्ट हैम यूनाइटेड को शिकस्त दी और वेस्ट हैम बहुत अच्छा खेल रही है इस सीजन, बहुत अच्छा खेल रहे हैं वेस्ट हैम और आर्सेनल बाय द वे, दे आर लेवल ऑन पॉइंट. लेकिन वेस्ट हैम जो है वो इस वक्त वो गोल एवरेज पे काफी बेहतर है, काफी बेहतर है. आर्सेनल ने कुछ उनको बुरी बड़ी शिकस्तें हुई हैं, 5-0 हार गए थे मैन सिटी से, 4-0 जो है वो हार गए इनसे अपना लिवरपूल से पिछले हफ्ते. सो वो सिचुएशन आर्सेनल का गोल लेवल खराब, लेकिन कल जो अच्छा मैच, कल जो अच्छा रिजल्ट हुआ मेरे ख्याल से, आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड विल बी वेरी हैप्पी फॉर देयर रिजल्ट, बिकॉज 1-1 से उनका मैच जो है वो चेल्सी के साथ बराबर रहा. इवन दो चेल्सी ने टोटली डोमिनेट किया इस गेम को और उनके मेरे ख्याल से कोई मुकाबला ही नहीं था. इफ यू टॉक अबाउट द पोजेशन, इफ यू टॉक अबाउट द शॉट्स ऑन टारगेट, इफ यू टॉक अबाउट द टोटल अटेम्प्ट्स एंड द नंबर ऑफ पासेस एंड ऑल, चेल्सी वर वे वे अबव मैनचेस्टर यूनाइटेड. लेकिन फिर भी ये मुकाबला 1-1 गोल से बराबर. अगर मैं गलती पर ना हूं, आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड वाज लीडिंग एट सम टाइम इन दैट मैच. इस मुकाबले में कहीं ना कहीं वो लीड कर रहे थे, बट अब हुआ ये है कि मुकाबला फिर भी 1-1 गोल से बराबर है, तो यूनाइटेड विल बी वेरी हैप्पी विद दिस रिजल्ट, आई एम प्रीटी श्योर. सो व्हाट्स द सीन नाउ? सीन इज दैट आई एम मूविंग टुवर्ड्स अ कमर्शियल ब्रेक. We'll catch you in a bit, so don't go anywhere and keep listening. If you wish to participate in the program, today there is no way of participating in the program. The only way you can participate is that you can join me on Insta Live that I'm doing right now. और उस Insta Live में आप message कर लें तो मैं वो पढ़ सकता हूँ, because मेरे पास एक ही mobile है और जो इसमें इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है, तो मैं आपके internet यहाँ चल नहीं रहा है, तो मैं आपके इस वक्त trend या WhatsApp वगैरह जो है ना वो सॉरी trend और tweets वगैरह जो है मैं पढ़ नहीं सकता हूँ. सो अगर आप इंस्टा पे ज्वाइन करना चाहते हैं, इट्स एट अदील अजहर, दैट्स AdeelAzhar, दैट्स वन वर्ड, एंड फाइंड मी देयर एंड ज्वाइन मी देयर. ऑलराइट, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद, डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, 26 पास्ट 8 इज द टाइम और सनराइज शो विद मी अदील. गुड मॉर्निंग इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. सो अगर आप मुझे कराची में सुन रहे हैं इस वक्त, इसका मतलब ये कि आप मुझे डेफिनेटली रेडियो पे सुन रहे हैं, रेडवा पे सुन रहे हैं, दैट मींस डायल पे सुन रहे हैं आप, चाहे वो आपकी गाड़ी हो या फिर आपके घर में जो है वो पुराना वाला रेडियो हो या जो भी सीन हो, बिकॉज बाकी शहरों में रेडियो पे इस वक्त मुझे नहीं सुना जा रहा है. तो वो लोग मुझे इंस्टा पे ज्वाइन किया हुआ है, एंड सम पीपल आर वॉचिंग द शो एंड वॉचिंग मी लाइव ऑन इंस्टा एज वेल. सो या ऑलराइट, सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि फ्राइडे को ब्रेकिंग न्यूज आई और वो ब्रेकिंग न्यूज आ गई कि जी कोरोना का एक नया वेरिएंट साउथ अफ्रीकन या सदर्न अफ्रीकन कंट्रीज से जो है वो आ गया है, जिसको नाम जो है ओमिक्रॉन नाम ही उसको जो है वो नाम दे दिया गया है. और इस देखिए अभी इस वायरस के बारे में अभी हमें ठीक से पता नहीं है ये बात कि कितना डेंजरस वायरस है, लेकिन जो साउथ अफ्रीकन साइंटिस्ट हैं दे थिंक दैट इस वायरस में कुछ ऐसी खसूसियात पाई जाती हैं, यानी खसूसियात वायरस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए तो ये खसूसियात क्या, ये तो इसमें बुराइयात हैं ये कि ये बहुत जल्दी फैलता है, ये फैलता है, ओके, कम्युनिकेबल ज्यादा है, तेजी से फैल रहा है, उनको ये लगता है. हाउएवर यहाँ पे जो एक वार्निंग की बात है और वो ये बात है कि अभी ये हमें नहीं पता कि क्या ये वायरस इस पे वैक्सीन जो है वो करती है या नहीं, उस पे असर करती है या नहीं करती है. सो ये अभी हमें नहीं पता. दो हफ्ते का टाइम इस पे जो है ना वो दिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और बाकी मुल्कों ने, और उन्होंने कहा कि यार हमें जरा दो हफ्ते का टाइम दें, हम जरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस पे करते हैं और फिर हम आपको जो है ना वो ये बताते हैं कि यार इस पे क्या वैक्सीन जो आपको लगी हुई है वो इस पे काम कर रही है या नहीं कर रही है. देखिए एक चीज तो मानने वाली बात है, अब तक कोरोना के जितने भी वेरिएंट्स आए हैं और जितनी भी म्यूटेशंस उसकी हुई हैं, हमारी जो वैक्सीन है शायद उसकी कुव्वत मदाफियत आपको वायरस लगवाने में कम हो गई हो, उसकी जो जो आपको वो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है वो शायद परसेंटेज कम हो गया हो. लेकिन एक चीज विच इज सर्टन नाउ इज दैट द हॉस्पिटलाइजेशन एंड द डेथ्स हैव गॉन डाउन बिकॉज ऑफ द इम्यूनाइजेशन. और कुछ साइंसदानों को मैं, जो थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक साइंसदान है, वो इस मामले पे थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक हैं कि यार हो सकता है कि उन दे आर कॉन्फिडेंट कि इस वायरस का भी जो है वो जो वायरस की जो म्यूटेशन है या इसका जो नया वेरिएंट ये आया है ये भी वैक्सीन को उस तरह धोखा ना दे पाए. हो सकता है कि ये फैल ज्यादा रहा हो, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन यहाँ पे जो डेथ वाला एलिमेंट है ना, देखिए एट द एंड ऑफ द डे एक जो वैक्सीन का काम होता है वो इंसानों की मॉर्टेलिटी को कम करना होता है, इंसानों की अमवाद को या मौत को कम करना होता है. सो क्या उस पर ये काम कर रहा है, नाउ दैट रिमेन्स टू बी सीन. सो दिस इज आई थिंक वेरी क्रिटिकल, जिसपे हम जाहिर है नजर रखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में. और देखिए साउथ अफ्रीकन्स को जो सिंगल आउट किया गया ना यार, इन बेचारों के साथ हो गई है ज्यादती. और सुबह में साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा को भी सुन रहा था, वो भी बड़े गुस्से में थे. वो कह रहे थे यार हमने तो दुनिया को बताया एक नया वेरिएंट और हम बता के फंस गए यार. और वो हुआ यही है, दुनिया भर ने साउथ अफ्रीका की अपनी फ्लाइट्स वगैरह, पाकिस्तान ने भी कल अनाउंस कर दिया कि हमने साउथ अफ्रीका के लिए अपनी फ्लाइट्स वगैरह जो है वो बंद कर दिए. सो अभी जो सीन हुआ है वो ये हुआ है कि यहाँ पे आके अब साउथ अफ्रीकन्स, हाँ मैं कमिंग साउथ अफ्रीकन्स की चलें, अब क्या हम बात करें. देखिए वायरस तो फैल गया दुनिया में, आप अब कुछ भी कर लें वो वायरस फैल चुका है, आप रोक नहीं सकते उसको. ठीक है, अब सिर्फ वो है ना फायर फाइटिंग अप्रोच जो है ना वो चल रही होगी दुनिया के मुख्तलिफ मालिक की तरफ से, लेकिन वायरस फैल चुका है, वो थोड़ा रहने दें. हाँ, अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसका दुनिया को इंतजार रहेगा, जो आगे डिटरमिन करेगी चीज, वो ये कि हाउ डेडली दिस वायरस इज, वन एंड टू हाउ वैक्सीन्स आर फाइटिंग विद दिस वायरस, वैक्सीन्स जो है वो इसके साथ किस तरह लड़ रही है. सो लेट्स सी, अभी देखते हैं. सो दुनिया जो है ना वो इस वक्त अपनी जिसे कहते हैं सांस रोक के बैठी हुई है, लेकिन इसमें हमारी नजर जो है वो तेल की कीमतों के ऊपर भी है. ठीक है, अब वापस आके ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आके जरा तेल की कीमतों के वाले से भी हम बात करेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि जाहिर इसको डिटरमिन करने वाले हैं अभी, और तेल की कीमतों के साथ ये हुआ क्या है आखिर, और फ्राइडे के दिन. सो अब ऐसा आपको पता ना, देव मेड अ कमबैक सॉर्ट ऑफ अ थिंग, सो उस पर भी हम बात करते हैं. अभी चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, good morning. Jindosin program tune in here. This is the Sunrise Show with me Adil, and you are listening to the Evergreen Vital Signs and their not so popular song, but this is Har Chehra. But every Vital Signs song is beautiful. We know that, right? Alright, चलें जी, अभी जाने से पहले हम बात कर रहे थे कोरोना के इस वेरिएंट के हवाले से, और अभी क्या है सीन के उसका जो एक एडवांटेज हुआ जिस पे लोग अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे थे एंड ऑल, कि जी पाकिस्तान में ऑयल की कीमतें जो हैं वो गिर गई एंड ऑल एंड स्टफ, बट ऑयल रिबाउंड हुआ है आज सुबह जबरदस्त. देखें जी, ऑयल फ्राइडे को इसलिए गिरा था बिकॉज एक तो एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई थी, दूसरा ये कि फ्राइडे को अमेरिकन मार्केट्स क्लोज थी, उनका थैंक्सगिविंग आपको पता है लॉन्ग वीकेंड थैंक्सगिविंग का उनका चल रहा था, तो आज उनकी मार्केटें भी खुलना शुरू होंगी. और इसके अलावा एशियन मार्केट जो है वहां पे अब काम शुरू हो गया और ऑयल ने अच्छा तकरीबन अपना जो आधा लॉस था उसको रिकवर कर लिया है. सो इट विल डिपेंड अ लॉट. देखिए दो फैक्टर डिटरमिन करने वाले हैं ऑयल की प्राइस आने वाले दिनों में क्या होने वाली है. ये जो वक्ती बेनिफिट हमें मिल गया, ये तो हमें मिल गया, वो दो फैक्टर्स क्या है जो डिटरमिन करेंगे. फैक्टर नंबर वन, कोरोना का जो ये वेरियंट है ये क्या करेगा. ओके, और ओमिक्रॉन की अगर हम बात करें तो ओमिक्रॉन जो है वो क्या उस पर वैक्सीन काम करती है या नहीं करती है. सबसे इम्पॉर्टेंट एट द एंड ऑफ द डे ये सबसे क्रिटिकल बात है कि क्या वैक्सीन की जो अफादियत है, जो कुव्वत है मुदाफियत आपकी जो वो बढ़ाता है या जो करता है उससे कतए नज़र व्हाट इज गोइंग टू बी द मोर्टेलिटी रेट. क्या ये वैक्सीन इस क्या ये वायरस का जो ये जो एक वेरियंट है ये इस वैक्सीन को बाईपास करके जा सकता है या नहीं, जाहिर है ये इंटरनेशनल मार्केट को डिटरमिन करेंगी उसकी डायरेक्शन. बिकॉज अगर इफ देयर इज एनी इंडिकेशन दैट कि ये वायरस बहुत स्टबन है, ये बहुत डेंजरस वायरस है एंड इट इज गोइंग टू स्टे हियर, और ये वैक्सीन को धोखा देकर आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, सो दैट मींस वी आर इन फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ लॉकडाउन. दुनिया भर में लॉकडाउन होने हैं. इसका मतलब ये कि एक और इंटरनेशनल, एक ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन हम एक्सपीरियंस करेंगे. पॉइंट नंबर वन. तो अब आने वाले दिनों में ईच एंड एवरी न्यूज अबाउट दिस वायरस का जो ये जो वेरियंट है, दुनिया इसको बहुत क्लोजली और बहुत नजदीकी मामले के तौर से जो है वो देख रही होगी. अब जो है वो दूसरा पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि इस थर्सडे को ओपेक प्लस का इजलास होने वाला है. ना ओपेक प्लस, वैसे तो ओपेक का नाम आपको पता है, आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, लेकिन उसमें प्लस का इजाफा कर दिया गया बिकॉज रूस को भी ला के उसमें बैठा दिया गया. आपको पता है रूस एक बड़ा प्रोड्यूसर है हाइड्रोकार्बन का और ऑयल का, खासतौर से गैस उनके मेन है प्रोडक्ट, लेकिन ऑयल भी वो काफी ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं. सो अब ये मुल्क बैठ के डिसाइड करेंगे कि यार ऑयल को कहाँ लेकर जाना है, क्या हमें इसकी प्रोडक्शन में इजाफा करना है, या इसकी प्रोडक्शन में जो है वो हमें कमी करनी है, या फिर इसको हमें जूं का तू रखना है. उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू सामने आता है इस पूरी चीज के हवाले से, ये भी ऑयल की प्राइस जो है डिटरमिन करेगा. जाहिर है हम पाकिस्तानी इस पूरे मैटर को बहुत क्लोजली देख रहे हैं. आपको इस बात का अंदाजा है कि हुकूमत पाकिस्तान अपने आप को जिस हद तक स्ट्रेच कर सकती है ऑयल प्राइसेस के ऊपर, हम अपने आप को स्ट्रेच कर चुके थे. अब गवर्नमेंट ने जो है वो, जाहिर है आपको पता है कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी एक बार फिर से लगानी शुरू कर दी है. IMF की तरफ से ये हमारे पे एक रिस्ट्रिक्शन है, हमें लगानी है. अभी एक साल जब तक IMF प्रोग्राम है तब तक तो ये सिलसिला होगा. फिर उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है, दूसरी सिचुएशन जो आती है वो ये आती है कि GST आपको पता है हुकूमत वो भी तकरीबन ख़त्म कर चुकी है. तो हुकूमत अपने रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा गिव अप कर रही है आपकी ऑयल की प्राइसेस को इस लेवल पे रखने के लिए. अगर ऑयल प्राइसेस एक बार फिर से 80-85 के करीब पहुंचती है तो हुकूमत को ऑयल की प्राइस बढ़ानी पड़ेगी. इसका मतलब ये कि ऑयल तो बढ़े ही बढ़े, लेकिन अगर ये प्राइसेस फिर कम होती हैं तो एक तरह का ना एक बिटर स्वीट किस्म की फीलिंग होगी. बिकॉज ऑयल की प्राइसेस कम होने का मतलब ये है कि यार ये वायरस जो है ना ये इस वक्त मजीद तबाही मचाने वाला है, और जाहिर है यार इससे हमारी जिंदगी को भी तो नुकसान है, हमारे आसपास जो हमारे लव्ड वंस हैं उनकी जिंदगी को भी तो नुकसान है. तो बस दुआ करें अल्लाह ताला जो है वो बस आसानी पैदा करे यार हम सब के लिए. लेकिन वो बात क्लियर है, अगर आपने ये ओमिक्रॉन फर्स्ट करें, ओमिक्रॉन का खतरा जो है ना वो लेट्स अज्यूम इट वाज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, और हमें ये पता चलता है कि नहीं यार ये इतना डेंजरस नहीं है इतना इसके बारे में कहा जा रहा था, तो ऑयल की प्राइसेस ऊपर ही जानी है. आई मीन दे विल गो अप राइट नाउ. ये कम होती हुई फिलहाल नजर आ नहीं रही है, एटलीस्ट इन द शॉर्ट रन. बिकॉज ये ना पिछले साल जो इनको शेखों को नुकसान हुआ ना वो अब पूरा करने में लगे हुए अपना वो अंधे दे प्लेइंग. और आपको पता है कि अमेरिका चाइना ये लोग अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से ऑयल निकाल रहे हैं, लेकिन इतना नहीं निकाल रहा है कि वो इंटरनेशनल सप्लाई को किसी तरीके से डिसरप्ट कर पाए. उल्टा इन्होंने जो अनाउंसमेंट की थी पिछले हफ्ते अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के हवाले से पिछले हफ्ते के आगाज में, उसका उल्टा इंपैक्ट हुआ था. प्राइसेस एक्चुअली वेंट अप. वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस थिंग अर्लियर एज वेल. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Yeah, welcome back guys. Ek baar phir se aapko khushamdeed kehte hain. This is the Sunrise Show with me Adil, and this of course is the last link of the program. To aaj program mein humne khabron ka aaj zahir hai covid ka naya variant jo tha wo kafi zyada under discussion tha. Acha ek cheez jo aa rahi hai wo kal kafi zyada WhatsApp group mein aapne dekha hoga ye khabar. Now I've got no confirmation of that or I've got no मैं कोई इसको डीबंक नहीं करने वाला, लेकिन शहबाज राणा साहब जो हैं वो आपको पता है कि हुकूमत से काफ़ी नाराज रहते हैं. ये आई थिंक एक्सप्रेस से इनका ताल्लुक है और न्यूज़ वगैरह वो बिजनेस उनकी डेस्क के वो शायद हेडवेड है. उन्होंने ये बताया है कि पाकिस्तान जो सऊदी अरब से अग्रीमेंट साइन करने वाला है जिसके तहत पाकिस्तान को $3 अरब आने वाले हैं हमारे अकाउंट में, वो एक बहुत ही खतरनाक किस्म का जो है एक कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान साइन करने वाला है, और सऊदी अरब IMF से भी सख्त तरीन शराइत पे जो है वो पाकिस्तान के साथ काम करने वाला है. अच्छा उसमें वैसे मैं बताऊं ज्यादातर बातें कोई ऐसे इतनी परेशानी, लेकिन जिस पे लोग डर रहे हैं ना वो ये है कि वो जो सऊदीज ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने डिफॉल्ट कर दिया, सो सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान की किसी भी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर सकता है. कहीं पे भी जाके वो कह देंगे कि ये बहरिया टाउन हमारा नहीं. नहीं मैं बहरिया टाउन को तो खैर नहीं छू, सऊदीज भी नहीं छुएंगे उसको, लेकिन सरकार हुकूमत पाकिस्तान वो हमारे जहाजों को, याद है ना जहाजों को रोक लिया था हमारे से पहले, मलेशिया की एक कंपनी ने रुकवा दिया था हमारे जहाजों को बर्तानिया में. कुछ वही काम जो है ना वहीं पर ही हुआ था, सॉरी नहीं आई थिंक बर्तानिया की कंपनी ने मलेशिया में रुकवाया था, कुछ इस तरह की गेम हुई थी. देखिए बात बड़ी सिंपल होती है, देर आर सर्टन सोवराइन गारंटीज जो हर मुल्क दे रहा होता है जब भी आप इससे कर्जे ले रहे होते हैं. स्पेशली देखिए दिस इज अ बायलैटरल, ये एक कर्जा है जो सऊदी अरब पाकिस्तान को दे रहा है. इसकी मुद्दत जो है वो एक साल बताई जा रही है, और उसमें देखें देर इज अ डिफॉल्ट क्लॉज, यानी इसका मतलब ये दैट सऊदी इज नाउ मीन बिजनेस. वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर पाकिस्तान ने अपने किसी भी कर्जे पर डिफॉल्ट कर दिया तो फिर ये इस कर्जे पे भी डिफॉल्ट जो है ये कंसिडर होगा. यानी वो ये कह रहे हैं ये जो ये नाउ दिस इज व्हाट शहबाज राणा इज सेइंग. सो वी नीड टू लिसन टू द गवर्नमेंट वर्जन ऑफ दिस, लाइक गवर्नमेंट के जो अब स्पोक्स पर्सन है वो इस बारे में क्या कहते हैं. या तो उन्होंने अब तक बता दिया होगा या फिर अभी तक उन्होंने नहीं बताया, तो ये भी आज हमें जानने का मौका मिलेगा कि यार ये सऊदीज के साथ जो हम डील कर रहे हैं क्या ये वाकई इतनी खौफनाक किस्म की इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा, और क्या वाकई ये टर्म्स एंड कंडीशंस असल में खौफनाक हैं, या जितने कर्जे आपके होते हैं वो सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे ही खतरनाक होते हैं. वो जो आया कि 72 घंटे के अंदर पाकिस्तान को हमारे पैसे वापस करने पड़ेंगे, ये भी चीजें हैं. बहरहाल तो क्या हमने इससे पहले बाकी अग्रीमेंट्स के टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ी हैं जो हम इस पर्टिकुलर सऊदी मुआहदे के हवाले से जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं. इस पे आज जरा कुछ रिसर्च करते हैं, ठीक है, जरा मालूम करके आते हैं, फिर मौका मिला तो कल प्रोग्राम में इस हवाले से जो है ना बात करेंगे. अच्छा जी, स्टिंग ड्रिंकर कहते हैं आई लाइक द एक्सप्रेशन सीरियसली द वे यू इशू वार्निंग, ये वाली. ऑलराइट, ठीक है. अच्छा ये खबर मैं देख रहा था अभी अखबार, बस जा रहा हूँ मैं अभी अखबार, ये कराची का डॉन का मेट्रो का सफा मेरे हाथ आ गया, और वो ये कहते हैं कि सिंध प्लान्स फाइजर बूस्टर शॉट फॉर ऑल एडल्ट्स, दैट इज वेरी नाइस. द प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट हैज डिसाइडेड टू इनोक्यूलेट ऑल पीपल विद बूस्टर शॉट ऑफ फाइजर कीपिंग इन व्यू द इंक्रीज रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन एंड री इन्फेक्शन पोस्ड बाय द न्यू COVID-19 वेरियंट Omicron. All right. वो कहते हैं जो decision has been taken, but the department is yet to make required arrangement for the purpose and announce a date for its launch. ठीक है. यानी वो ये कह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट वाले जितने भी जो हैं, वो सिंध गवर्नमेंट, सिंध में रहने वाले जितने लोग हैं, उनको एक बूस्टर शॉट मिलेगा और फाइजर का बूस्टर शॉट मिलेगा. Now we really don't know कि ये काम भी कर रहा है इस पे या नहीं कर रहा. लेकिन अदा साई साई चो साई बूस्टर शॉट मिलेगा, मिलेगा इस बूस्टर शॉट हमको मिलेगा, लगाते हैं बूस्टर शॉट, लगवा लेते हैं यार. ठीक हो गया, हमारी बहन डर रही है, हम वालदा गई हुई है ना अमेरिका, वो मैंने कहा भाई लगवा लो वहाँ कैनेडा में तो बड़ा आसानी से बूस्टर शॉट. नहीं भाई, ब्लड क्लॉट ये वो फलाना, क्या बताएं लोगों को. लेकिन खैर चले, यहाँ तो लग रहा है अभी देखते हैं, सिंध गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है तो लगवाते हैं. साथ तवाब कहते हैं शहबाज राणा डिस्टॉर्ट्स द ट्रूथ सिग्निफिकेंटली. ओके, इनका ये ख्याल है. मैं आपको वो है जरा मसला है, काफी दफा वो बंदा गलत भी प्रूफ हुआ है लेकिन फिर भी वो जीता है, लगा हुआ है भाई वो अपने काम से. यूनुस खान के नखरे सोने लग दे. यूनुस भाई का यही प्रॉब्लम है भाई, वो बड़ी वो है हसीना है वो क्रिकेट की, उनको मनाना इतना आसान नहीं होता. दिस इंस्टा शो शुड बी रेगुलर. ओके, हाफजा कहती हैं, हाफजा ताहिरा कहती हैं टुडेज शो इज वेरी प्लेजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडियो एंड वीडियो. ऑलराइट, दैट इज ग्रेट. व्हाई पाकिस्तानी एक्सप्लेयर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रेनिंग आर यंगस्टर्स. पैसे नहीं बनते साईं, पैसे नहीं बनते उसमें, समझा करें ना आप बात यार. एनीवे चलें जी गाइस, वक्त आ गया, आप लोगों से जात लीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात जो है वो होगी अब कल सुबह एक बार फिर. होपफुली यार इंटरनेट विल बी बैक, एंड होपफुली व्हेन द इंटरनेट इज बैक, सो मुझे इंस्टाग्राम वाला सीन जरा थोड़ा सा अवॉइड करना पड़े, लेकिन फिर भी चलें जी अभी आपसे हम मिलते हैं कल एक बार फिर. विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल डे एंड वीक है. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद.